महाराज जी कह रहे हैं कि जब तक मन बुद्धि और पांच ज्ञान इंद्रियां एक स्वरूप में ना आ जावे तब तक जो मूल अभिमान है उसको कर्तापन कहते हैं या अहम भाव कहते हैं, तब तक उसका नाश संभव नहीं है, जो मूल अज्ञान है। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य ने या जीव ने ज्ञान इंद्रियों के बंधन से भी छुटकारा पाना है, मन से भी छुटकारा पाना है, बुद्धि से भी छुटकारा पाना है और कर्तापन से भी छुटकारा पाना है। तो आप विचार करके देखो, क्या आप संसार में किसी भी प्रकार की कैसे भी सेवा करके या संसार में पुरुषार्थ करके क्या आपको लगता है इससे छुटकारा हो जाएगा? क्योंकि संसार में यदि पुरुषार्थ करना है तो ज्ञान इंद्रियों की भी जरूरत है, कर्म इंद्रियों की भी जरूरत है, मन की भी जरूरत है, बुद्धि की भी जरूरत है और कर्तापन के साथ ही ये सब चीजें आपकी रहती है। तो इसका मतलब हो गया कि इन सबसे मैंने छुटकारा पाना है। इंद्रियां भी जीव के लिए बंधन रूप है, मन भी जीव के लिए बंधन रूप है, बुद्धि भी जीव के लिए बंधन रूप है और इससे भी एक सूक्ष्म चीज है आपके देह में प्राण, इसको श्वास कहते हैं, प्राणापान कहते हैं, उसमें से भी मैं बंधा हुआ, उसका भी तुमको बंधन है। तो इसलिए ये सारी की सारी चीजें, इस देह के अंदर एक ऐसी वस्तु है जिसको जीवन शक्ति कहते हैं, जिसको सत्ता कहते हैं और जिसका एक नाम कुंडलिनी भी है। तो वो शक्ति इस देह की ही मर्यादा को, इस देह के ही जीवन को कायम नहीं रखे हुए है, बल्कि सारी सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं और जितने भी जीव हैं सबकी सत्ता को वो कायम रखे हुए है, वही इन सबका आधार है। इसका मतलब जब तक मैं उसके अनुभव का प्रयास ना करूं, उसकी एग्जिस्टेंस पे, उसकी सत्ता पर मैं विश्वास ना करूं, मेरे अंदर वो सत्निश्चय ही ना हो, तब मैं क्यों कोशिश करूंगा वहां तक पहुंचने की? उसके नीचे ये जितनी भी चीजें हैं आपकी, मैं आपके प्राण के, सब जीव के लिए बंधन का रूप। महाजनी कहते हैं कि मन की चंचलता में प्राण की चंचलता कायम है, साफ कहे नहीं करे। इसका मतलब जब मन निश्चल होगा तो प्राण भी निश्चल होगा, या उसकी गति होगी तो इतनी सूक्ष्म होगी जो आपको पता ही ना लगे। मतलब आपके आपके अंदर अंदर की स्थिति में वो बाधक ना बने। इसीलिए ये रास्ता अंदर ही जाने का है, क्योंकि बाहर यदि जाते हो तो बाहर तो सारे इंद्रियां भी चाहिए आपको, मन भी चाहिए, प्राण भी चाहिए, क्रिया करोगे तो श्वास तो चलेगी नहीं चलेगी आपको। इसका मतलब रास्ता अंदर का ही है, रास्ता बाहर का नहीं है। बाहर का परहेज है और मार्ग अंदर का है। इसलिए महाराज जी ने जब ये वासना छेदन विवेक में ये वचन लिखा तो उसके पहले उन्होंने वासना क्या है का प्रसार लिखा वासना विवेक। और मैंने उस सारी वासना को समझना है, उस सारी इच्छा चक्र को समझना है, अपने संस्कारों को समझना है और उसके लिए महाराज जी ने फिर वो पांच नियम लिखे उससे पहले, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्संगम, कि मनुष्य इस प्रोग्राम के अनुसार चले तो वो अंदर जाने का पात्र बन पाएगा। तो गुरु ने तो पूरा मार्गदर्शन किया है और हर चीज प्रकट की है, जो उनके सामने थे उनके लिए राजयोग की साधना उन्होंने दी, और जो उनके उनसे भेंट नहीं कर सके या उनके जो बाद हुए उनके लिए उन्होंने महामंत्र प्रकट किया। सारी सारी छोड़े नहीं छोड़ी, खाली किताबी ज्ञान थोड़ा छोड़ दिया, और पूरा उनका जो जीवन अपना पेश किया जिससे युगों युगों तक लोग यह प्रेरणा लेते रहेंगे। तो जब तक मैं उसको समझू ही ना गहराई से कि इसकी जरूरत क्या है, तब तक ये बात, जब तक इंद्रियां, मन और बुद्धि एक स्वरूप में ना हो जावे, तब तक जो है वो ये कर्तापन का नाश नहीं हो सकता, ये भ्रम का नाश नहीं हो सकता, इस बात का कोई अर्थ नहीं बनता। तो प्रारंभ जीवन का आपका जो सांसारिक जीवन है उसको आपने सिकोड़ना ही सिकोड़ना है, उसको मर्यादा में लाना ही लाना है। और मर्यादा का मतलब ये होता है कि जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को मैं फैलाने की कोशिश ना करूं, कम से कम मैं गुजरान वाला प्रोग्राम में व्यतीत करने की आदत डालूं, क्योंकि मैंने अंदर जाना है। संसार की नकल मैं इसलिए नहीं कर सकता, संसार ने अपने जीवन को बाहर फैलाना है, तो तकलीफ को उसने बढ़ाना है अज्ञानता के कारण। संसार ने अज्ञानता के कारण अपनी तकलीफों को, अपनी बेचैनी को बढ़ाते जाना है। जिसको विकास समझ रहे हैं वो उनका पतन है, उनको पता ही नहीं इस बात का कि मैं यदि गुरु भक्त हूं, या मैंने यदि गुरु धारण किया है, या मैंने महाराज जी पर विश्वास किया है और उनके इस शास्त्र को, संत विलास को पढ़ा है ध्यान से, और मेरा यदि ध्यान यहाँ जाता है कि जब तक इंद्रियां, मन और बुद्धि एक स्वरूप में ना आ जाने, तब तक मूल भ्रम का नाश नहीं हो सकता या कर्तापन का नाश नहीं हो सकता, जो जीव की दुर्दशा के, या यूं कहें कि मेरी दुर्दशा के कारण है, मेरे मानसिक क्लेश के कारण है, मेरे जीवन की बर्बादी के कारण है। तो इंद्रियां तो अभी रसों में डूबी पड़ी हुई हैं, भटक रही हैं, लालायित हो रही हैं, तो ऐसी इंद्रियां कभी अंदर जा पाएंगी क्या? इसीलिए आपने इसको वैचारिक रूप से भी गहराई से समझना है, एनालिसिस करके, क्योंकि वाणी आपको जो हम जो देह के भोगों में या इंद्रिय भोगों में लगे हुए हैं या संसार में जो सुख की कल्पना कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो आपको वो पॉइजन दिखा रहे हैं महाराज जी। प्रेमी, ये संसार देखने में सुखदायी प्रतीत होता है परंतु अंदर से विष रूप है। देखन में ये बाग सुहाना, जिन जिन भोगा तिन अंत पछताना। संत विलास भी साफ कर रही है और वाणी भी साफ कर रही है, निर्णय तो बड़ा स्पष्ट है। तो यदि मैंने इस निर्णय पर गहरा मनन ही नहीं किया, और इसके मनन के लिए महाराज जी ने जो जो सहायता की है वाणी के रूप में और वचनों के रूप में संत विलास ने, उस पर मैंने जो है बार बार विचार ही नहीं किया, तो मैं इंद्रिय भोगों में दोष का दर्शन कैसे कर सकूंगा? मैं तो केवल अध्यात्म की बातें करता रहूंगा, प्रोग्राम मेरा और मेरी चाल जो है संसारी वैसी चलती रही, जैसा आम सत्संगियों में आप देखते हो। ज्यादातर सत्संगी ऐसे ही होते हैं, संसार की चाल उनकी वैसे ही चलती रहती है, अंदर से वासना वैसे ही पलती रहती है कि मैं भी किसी तरह से इनकम बढ़ाऊं और भोगों को बढ़ाऊं, चैन का जीवन जीऊं। तो मेरा बुद्धि का जो निश्चय है वो वहीं खड़ा हुआ है, सत्संगी बनने के पश्चात भी मेरी बुद्धि का निश्चय वहीं खड़ा हुआ है। मुझको ये बात समझ में नहीं आ रही। इसलिए महाराज जी ने पूरा विज्ञान पेश किया उसके बाद, प्रेमी ये संसार और तेरा शरीर पांच तत्व का बना है, ये विज्ञान है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और जो जितने भी तेरे इंद्रियों के भोग हैं वो पांच विकार से युक्त हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जितनी भी तेरे डिजायर्स हैं वो सब इसके अंदर ही आती हैं, जितनी भी इच्छाएं तेरी। इसका मतलब सांसारिक जीवन में यदि मैं विकास कर रहा हूं, उसको अच्छा समझ रहा हूं, उसको ठीक समझ रहा हूं, तो ये पांच विकार मेरे अंदर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसलिए देखा होगा बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग इतने भ्रष्ट हो जाते हैं कि देश को बेच भी सकते हैं, इतनी पावर होती है उनके पास। एक प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर होती है यदि वो भ्रष्ट हो, इस संसार में कोई भी इलेक्शन लड़के पहुंच सकता है ना वहां तक। तो यदि उसके अंदर जो है वासना गहरी है तो देश का क्या हाल करेगा, विचार करके देखो। और हम अज्ञानी लोग भी क्या देखेंगे, बड़ा विकास कर रहा है प्राइम मिनिस्टर तो बहुत अच्छा है, देखिए हमको अपना ही होश नहीं, हम क्या समझे हमारे देश में किस बात में भलाई है और किस बात में बुराई है। तो इसीलिए अंधी दौड़ जो है वो विकास की चल पड़ती है। तो इसलिए भारत में महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा गया, और किसी को क्यों नहीं कहा गया, कि उनको होश था, वो जानते थे देश की क्या नीतियां होनी चाहिए, जीवन कैसा होना चाहिए, देश के लोगों की हालत क्या है, कौन सी नीति देश को डुबोगी और किस नीति से देश का जो भला होगा, वो जानते थे। लेकिन गांधी की बात नेहरू ने ही सुनी, हम क्या सुनेंगे उसकी बात, जो सबसे नजदीक था उनके, उन्होंने ही नहीं सुनी उनकी बात। तो गांधी के सपनों का भारत कहां बना, गांधी तो ऋषि नहीं थे, लेकिन जो ऋषि है वो तो सर्वज्ञाता है, असली राष्ट्रपिता तो नहीं, वो तो जगत पिता है, इसलिए जगत गुरु कहते हैं। ऋषि जो है वो तो जगत गुरु, क्योंकि उसका ज्ञान पूरे जगत का मार्गदर्शन करता है और दुनिया की कोई ताकत उसको काट नहीं सकती। इसलिए सारे ऋषियों की जो का जो निर्णय है वो एक ही जैसा होता है, सबने इस जगत के पीछे जो आंख से दिखाई पड़ रहा है, जो चेतन सत्ता मौजूद है, उसकी उपासना की, उसका ज्ञान प्राप्त किया, उसके ज्ञान के प्रकाश में हमारे लिए मार्गदर्शन किया, संसार में कैसे रहना चाहिए और किस बात की कोशिश दिल से करनी चाहिए, और संसार में जो ये भोग विलास है और जो सुख सुविधाएं हैं ये केवल काम चलाने के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमने इसको जीवन का लक्ष्य बना रखा है। जितने भी आपको चारों तरफ लोग दिखाई पड़ते होंगे तो जीवन के लक्ष्य उनके बाहर के ही तो हैं, अंदर का किसका है, अंदर का लक्ष्य तो जानते ही नहीं। ये तो सत्पुरुषों की वाणी कह रही है, प्रभु के सिमरन कार ने ये दुर्लभ जीवन पाया। दुर्लभ जन्म जो है हर प्रकार की मुसीबत से मुक्त होने के लिए मिला है, और मैं अज्ञानता के कारण हर प्रकार की मुसीबत का विकास करके संसार से विदा होने की तैयारी कर रहा हूं, ये मेरी अप्रोच है। तो ये बात तो लोगों की समझ में नहीं आई, इसलिए ये अंदर की गति है। ये मार्ग अंदर का है, साधना का मार्ग है। इसीलिए बाहर जब ये व्यक्ति सादगी का जीवन अपनाता है, अर्थात भोगों को लक्ष्य ना बनाकर देह की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए वो मिनिमम अर्निंग करता है, और जो पारिवारिक कर्तव्य हैं उनके पालन के लिए वो भी मिनिमम कोशिश करता है, ताकि मर्यादा का जीवन मर्यादा की आवश्यकता उनकी भी पूरी हो सके। बाकी सबकी डिजायर्स पूरी करने का उसका लक्ष्य नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि सबकी डिजायर्स पूरी करता है, वो तो अनंत है। सभी क्लेम करेंगे मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी ये बात पूरी करो, मेरी ये बात पूरी करो, तेरी जिंदगी तो गई। सत्पुरुष के मार्गदर्शन अनुसार कौन चलेगा? तो गुरु भी तो कहेगा मैं तेरा गुरु हूं, और गुरु की तो बात तो सर्वोच्च है, उसकी बात मानने में तेरा पतन है ही नहीं, बाकी सबकी बात मानने में पतन के रास्ते खुलोगे। तो अब तू सोच, गुरु तेरे लिए सर्वोच्च है या माता पिता बीवी बच्चे सर्वोच्च है या समाज सर्वोच्च? इन सबका रक्षक तो गुरु है। जितने भी सत्पुरुष हैं हम क्यों पूजा करते हैं आज भी उनकी? राम किस काल में हो गए, कृष्ण किस काल में हो गए, तो सारे सत्पुरुषों की, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे वो मोहम्मद साहब हो, आज भी समाज उनकी पूजा क्यों करता है, उनके ऊपर श्रद्धा क्यों करता है, उनके लिए लड़ता क्यों है लोगों से कि तूने मेरे सत्पुरुष का अपमान कर दिया? इसका मतलब वो वास्तव में सर्वोपरि है। माजी तो कहते थे जिस देश में इस अध्यात्म विद्या की जरूरत नहीं रहती वो देश समाप्त हो जाता है, मतलब तो बर्बाद हो जाता है, वो बच नहीं सकता, क्योंकि जो निरंतर पतन के रास्ते पे जा रहा है वो बचेगा क्या? कृष्ण के सामने ही कृष्ण की बात लोगों ने मानना बंद कर दी थी तो क्या हाल हुआ? महाभारत के रूप में सामने आया नहीं आया? उस समय कृष्ण की बात कौन सुन रहा था? इसीलिए चाहे वो राम का काल हो, चाहे वो कृष्ण का काल हो, या किसी सत्पुरुष का काल हो, उनकी बात जब नहीं सुनी जाती, उनके ज्ञान की जरूरत लोग नहीं समझते, तो उस सिविलाइजेशन का, उस समाज का, उस देश का सर्वनाश होता ही होता है, कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए ये बड़ा गंभीर विषय है कि मैं इस बात को गहराई से समझूं कि इंद्रियों के भोग मनुष्य की के जीवन की बर्बादी का रास्ता है। इसलिए मनुष्य का जीवन इस डायरेक्शन में बीतना चाहिए कि भोगों के रस से मैं अपने आप को मुक्त कैसे करूं। मैं तो भोगों का रस बढ़ा रहा हूं, तेरी कोशिश होना चाहिए भोगों के रस से मैं अपने आप को मुक्त कैसे करूं। इसलिए महाजी कह रहे हैं प्रेमी रास्ता उसका मर्यादा ही है, सादगी का जीवन ही है। नकल करके तरह तरह के आइटम इकट्ठे कर देना, हर चीज की क्वालिटी और जो है वैरायटी बढ़ाते रहना, ये विकास नहीं है। तो बस टाइम बचेगा कहां पर? अब हर चीज संसार की नकल करके तू जब मैनेज करेगा तेरे पास टाइम बचेगा क्या? उसके लिए कमाई कितनी करनी पड़ेगी तुझे? तो तेरी सोच जो है वो बाहरी हो जाएगी, फिर अंदर तो जाने लायक रहेगी नहीं। तो ये फंडामेंटल नीड है कि आपका सादा जीवन होना चाहिए, तब आपके पास कुछ वक्त बचता है। क्योंकि आप देख लीजिए कि जिसको देखो कमाई में पूरा फंसा पड़ा हुआ है, और जिसकी चल पड़ती है वो बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, फिर कहता है क्या करूं, ना सिमरन के लिए वक्त है, मैं सत्संग में भी टाइम से नहीं पहुंच पाता, और इतना थक जाता हूं कि सुबह जल्दी उठ भी नहीं सकता, बस मैंने अपनी जिंदगी ही बेच दी, होश ही नहीं मुझे, जिंदगी मेरी थी और मैंने भोगों के लिए उसको बेच दी। तो जिस मनुष्य ने अपना जीवन अपने हाथों से ही बर्बाद किया हो उसकी रक्षा कौन करेगा? तो इसीलिए इंद्रियों और मन और जो आपका बुद्धि है ये एक स्वरूप में आएंगी तो जाएंगी कहाँ? ये कौन सा एक स्वरूप है तेरे अंदर? तेरे देह में जो कुंडलनी शक्ति है वो एक जैसी है और ये सब उसी में जाके लीन हो जाते हैं। तो महा जी कहते हैं एक वाणी में आता है, सल्ले सल्ल समाया, पानी पानी में मिलकर एक हो जाता है। तो जब ये जीव अंदर की साधना करके उसका दृष्टा बनता है जो तेरे देह में सम स्वरूप है, तो ये फिर अंत में उसके साथ ये एक हो जाता है। सल्ले सल्ल समाया, जल जल में ही विलीन हो गया। अर्थात तेरी जो सीमित चेतना थी और जो असीमित चेतना है अंदर, उसके साथ वो एकाकार हो गई। इसलिए कहते हैं जगद्गुरु शंकराचार्य कि भक्ति क्या है, कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति ही इत्यभिधीयते। अपने स्वरूप का, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, वास्तविक रूप है, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। तो भक्त का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य का जब वो अनुभव करता है तो अनुभव की जाने वाले वस्तु के साथ वो एक हो जाता है। ये भक्ति का, भक्ति की पूर्णता है। तो सच्ची एक स्वरूप में आ गई, नहीं आ गई, कुछ बचा अलग अलग। तो इसलिए साधना करते करते सबसे पहले आपका जो मन है उसके अंदर जो जन्म जन्मांतर के संस्कार बैठे हुए हैं, उन संस्कारों का धीरे धीरे शोधन होता है उस सिद्ध मंत्र के बल से। लेकिन आप पहले जो बिगड़े हुए संस्कार हैं इंद्रिय भोगों के, उनसे तो बचो। मन के संस्कारों का आप शोधन कर रहे हो और नए संस्कार आप जो है वो खोटे बना रहे हो, भोगों के संस्कार बना रहे हो, तो कब शोधन होगा फिर? वो तुम कर क्या रहे हो? जैसे एक तरह से कोई झाड़ू लगा रहा हो, उधर से कूड़ा जो है हवा के साथ अंदर आ रहा हो। तो अंदर आने के रास्ते तो बंद करना पड़ेंगे। तो भोगों के संस्कार जो अंदर आ रहे हैं, मन के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं इंद्रियों के द्वारा, तो उन पर तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। इसीलिए भोग वृत्ति नहीं चाहिए साधक की, उसको इतना संयम होना चाहिए कि भोगों का अट्रैक्शन उसके अंदर से बेयर मिनिमम हो जाए, केवल उसका काम चलता है। क्योंकि साधना तो देह के द्वारा ही करेगा, तो देह की रक्षा तो जरूरी है, और वक्त समय चाहिए साधना के लिए, तो समय की भी आवश्यकता है तुमको। तो संसार ये तुमने पहले ही फैला लिया, तो जीवन के बर्बादी के तुमने तो रास्ते ही खोल दिए पहले बेहोशी में, क्योंकि तुमने दुनिया वालों की नकल करी, गुरु की तो बात सुनी ही नहीं तुमने। तो अपने हाथ से आपने अपना सुसाइड कर लिया, आपको होश ही नहीं, मैं करके रहो, बड़े खुश हो रहा मैंने बड़ी कमाई बढ़ा ली है, फिर ये भी खुश हो रहा कि दूसरों की तुलना में देखो मैं कितना अच्छा हूं, कितना होशियार हूं, कितनी माया मैंने इकट्ठी कर ली, कैसा बढ़िया मकान बनाया है मैंने, बड़े खुश हो रहा हूं। जो आपने जिंदगी की बर्बादी की है, आपको होश ही नहीं है, आप खुश हो रहे। तो इसीलिए जब गुरु की बात हम गहराई से पढ़ते हैं, उसका गहरा मनन करते हैं, तो ये बात हमारे कान खड़े कर देना चाहिए कि देखने में ये बाग सुहाना, जिन जिन भोगा सो अंत पछताना। जिन्होंने भी इस संसार में अपने मन को लगाया है, भोग वृत्ति को और गहरा किया है, वो अंत में उनको पछताना ही पछताना है। सत्पुरुष की बात गलत नहीं हो सकती, वाणी की बात गलत नहीं हो सकती, चाहे संसार सारा संसार उसे उलट बात कहे, लेकिन वाणी अल्टीमेटली सत्य ही कहती है। इसलिए मैंने यदि महाराज जी को गुरु बनाया है अपना, तो मेरी बुद्धि विचारवान होनी चाहिए, इस पर गहरा मनन करना चाहिए। मेरा जो परिवार है, सारे भोगवादी क्यों ना हो, लेकिन मैंने भोगवादी नहीं बनना, वो मेरी बात नहीं सुनते ना सुने, लेकिन मैंने जो है काम चलाने वाली बात करनी है, अपने को बचाना है, क्योंकि उनको होश नहीं है, मैं उनके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तो मैंने तो सही रास्ते पर ही चलना है और गुरु की शिक्षा को अपनाना है। तो मेरा गोल क्या है, मैंने इंद्रियों को सबसे पहले मन में लीन करना है। प्रोसेस क्या है सर, इंद्रियों को मन में लीन करना। तो इंद्रियां मन में आप फिजिकली किसी प्रैक्टिस से लीन नहीं कर सकते, ये योग मार्ग से ही लीन होती है। तो अंदर जब मंत्र का जाप करते करते आपके प्राण भी सूक्ष्म होने लगते हैं, उसके अनुसार मन की गति भी सूक्ष्म होने लगती है, उधर आपकी बुद्धि में शास्त्र पढ़ के उसका मनन करके आपकी बुद्धि में विवेक जागृत हो जाता है, बुद्धि का निर्णय फाइनल हो जाता है कि ये पांच विकारों का जीवन है, ये दर्दनाक जीवन है, इसीलिए इसमें मैंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो जब उसके अंदर ये विवेक जागृत होता है तो इन भावों के प्रति, इंद्रिय रसों के प्रति उसके अंदर वैराग्य भाव आ जाता है, इसका राग उसका टूट जाता है, जिसमें पॉइजन है नहीं? तो उसमें उसको तो भोगूंगा तो मरना ही मरना है मैंने, पॉइजन कौन सा है, ये पांच विकार वाला पॉइजन है। तो मन के अंदर जिसके तो क्रोध बढ़ जाता है, कितना बेचैन होता है सोचो, जब क्रोध आता है तो शरीर की क्या हालत हो जाती है, पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो पॉइजन तो है ही वो हर विकार पॉइजन है। तो इसीलिए जब सिद्ध मन का वो जाप करता है और बाहर संयम रखता है, बुद्धि में विवेक होता है और ये वैराग होता है, तब अंदर की जो गति है मन की, वो आपकी सिमरन में ही लगी रहती है, प्रेम से सिमरन करती है, और इस सिमरन के बल पर मन का शोधन होता है, प्राणों की गति भी सम होने लगती है। जो अंदर बाहर के प्राण का आना जाना है, इसको 12-16 की गति बोलते हैं शास्त्र, विषम गति है, तो ये सम हो जाती है। जब सम होती है तो देह के अंदर जो कुंडलनी शक्ति है उसका जागरण होता है। जागरण का मतलब आपके वो अनुभव में आती है, अभी तो आपको अनुभव ही नहीं उसका है, अभी भी है, आपके अनुभव में नहीं। तो उसको कहते हैं जब ये नाभि चक्र खुलता है उस मंत्र की शक्ति के बल पर, तब आपको उस कुंडलनी का अपने अंदर अनुभव होता है, उस जीवन दायिनी शक्ति का अनुभव होता है। तो फिर वो उसका जो है अनुभव गहरा होता रहता है, या उसकी जो है शरीर में जो स्थिति है वो गहरी होती रहती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसके बल पर, ये काम आप नहीं करते हो, ये वो शक्ति ही करती है, उसके बल पर ये इंद्रियां जो है वो मन में विलीन होने लगती है। तो उसके लिए उपरचन में आता है कि मनुष्य जो है वो अपनी आंख का ही दृष्टा बन जाता है, कान का ही श्रोता बन जाता है, श्रोतस्य श्रोतम। तो मतलब कि यह क्या है कि आपकी, अभी मैं आंख बनकर घूम रहा हूं, मैं आंख से देख रहा हूं ना, फिर वो आंख को देखने वाला बन जाता है, अर्थात वो अंतर्यामी है, उस वो अंदर है पर आंख बाहर है उसकी, मतलब अपने ही आंख की दृष्टि के वो पीछे जाता है, सारी सृष्टि उसकी आंख में सिमट आती है, जैसे पूरी सृष्टि आंख में ही हो सकती। तो वो स्थिति है उसकी कि इंद्रियां जो है वो मन में विलीन हो जाती है। इसके बाद अगली स्थिति है कि मन जो है वो बुद्धि में विलीन हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या है, जितना जितना ये गति जो है इस कुंडलनी शक्ति की अपने मूल स्रोत की तरफ जाती है, ये जिसको हम दसवां द्वार कहते हैं, वैसे वैसे ये स्थितियां आपकी अंदर ऑटोमेटिकली आने लगती हैं, जिसको महाजी कह रहे हैं कि इंद्रियों को मन, इंद्रियां, मन और बुद्धि जब एक स्वरूप में जब तक ना आ जावे तब तक कर्तापान मूल भ्रम का नाश होना संभव नहीं है। तो जब ये विलीन हो जाती हैं तब भी कर्तापन बच जाता है। अब ये एक स्वरूप में तो आ गई, तो इसलिए माही कहते कि आत्म जो स्थिति है ये फाइनल स्थिति नहीं है, फाइनल स्थिति क्या है, आत्मलीनता ही है। तो आत्मलीनता ही क्या है, कर्तापन भी जब नाश होता है वो आत्मलीनता ही है। कि अब ये भ्रम नाश हो गया जीव का, इसका भ्रम नाश हो गया वो ईश्वर है। तो ये भ्रम में फंसा हुआ हूं, ये वास्तविकता नहीं है संसार की जो मैं देख रहा हूं। तो वाणी तो हर चीज बयान कर रही है लेकिन वो इतनी गहरी बातें हैं, जैसे ये बात आपने पूछ ली, कितनी गहरी बात है, ऐसा कोई अर्थ कर सकता है क्या समझा वाला से बैठ के, अर्थ कोई निकलता है ऐसा क्या, अर्थ तो करने की चीज ही नहीं है, ये तो अनुभव की चीज है। तो सतपुरुष शास्त्रों में अनुभव की बातें भी लिख देते हैं और साधारण बातें भी लिख सकते हैं जो बुद्धि से विचार किया जाता है, इसके बारे में कैसे विचार करोगे, ये तो अनुभव की बात है। तो जब तक उसकी प्रारंभिक बातें गुरु की नहीं मानोगे आप, उसी में ही आप 20-20 साल लगा दोगे, फिर कहते रहोगे अभी तो मैंने टमाटर खाने छोड़ दिए हैं, अब मैंने प्याज खाने छोड़ दिए, अब मैंने शराब पीनी छोड़ दी है, तो जिंदगी भर यही करते रहिए, खाने में पड़े रहिए। तो इसलिए ये पांचों नियम महाराज ने साथ चलने को कहा है, एक एक करके नहीं कहा इन्होंने, क्योंकि लक्ष्य क्या है पांच नियम के पालन करने की, पांचवा जो नियम है सिमरन, इसमें आप सफल हो सको, कि अंदर की गति तो सिमरन से एडवांस होनी है ना, बाहर के संयम से अंदर की गति एडवांस नहीं होनी है, वो तो सिमरन से ही होनी है। तो सिमरन जो है वो ध्यान में बदल जाता है, अंतर ही आता है सिमरन में आप। तो जो अंदर महाजी कह रहे हैं प्रेमी अंदर कोई चीज प्रगति नहीं तेरे, कोई अनुभव में नहीं, तो ध्यान किसका करेगा। तो इसलिए सिमरन के बाद फिर ध्यान अवस्था आती है, अंदर कुछ अनुभव होता है आपको, वो नाद रूप में अनुभव होगा, कुंडली रूप में अनुभव होगा, वो अंदर की हालत है ना सारी सारी, तब जाके ये सारा सारा जो है तेरी इंद्रियां शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, प्राण सूक्ष्म होते हैं, प्राण का भी तो बंधन है, समाधि में प्राण भी इतने सूक्ष्म में आते हैं, महाजी कहते हैं प्रेमी इतने सूक्ष्म में आते हैं कि पता ही नहीं लगता ये चल भी रहे नहीं चल रहे। क्योंकि प्राण भी आए कहां से हैं, कुंडली से ही तो उदय हुए हैं वो, स्रोत तो कुंडली है उसका। सोचो कि इसलिए उसका नाम महाप्राण भी है कुंडलनी का नाम, जो प्राणों का मालिक है, समझ नहीं, वो प्राणनाथ है भैया। एक तो संसार में स्त्रियों के प्राणनाथ होते हैं, समझ नहीं, एक हमारा सबका प्राणनाथ है वो अंदर, वो वास्तव में प्राणों का मालिक है, प्राण उससे उदय होते हैं, फेफड़ों से प्राण उदय नहीं होते हैं, ये तो डॉक्टरों की खोज है, साइंटिस्टों की खोज है, योगियों की खोज है, वो प्राण कुंडलनी से उत्पन्न होता है। इसीलिए ये जो रास्ता है वो सारा सारा शांति का रास्ता है, अंदर का रास्ता है, और इसमें बाहर का संयम लाजमी है। इसलिए महाराज जी ने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई, सबसे बड़ी आवश्यकता सिमरन की बताई, समतलास में लिख के दिया कि 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा सायंकाल सिमरन करना लाजमी है। और लिखते हैं खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना, और लिखते हैं सिमरन से लापरवाही करनी है अपनी मूल बर्बादी करनी है। तो एक बार को अनपढ़ रह जाएगा काम चल जाएगा तेरा, लेकिन सिमरन नहीं किया तो तेरी जिंदगी की बर्बादी है, क्योंकि सिमरन तो अनपढ़ आदमी भी कर सकता, लेकिन इंद्रियों के भोगों में डूबा आदमी पूरी जिंदगी ही बर्बाद है, सारी जिंदगी बेचैनी भोगेगा और मरते वक्त इतना बेचैन होगा कि आप उसके मन को देख नहीं सकते क्या बेचैनी लेके जाता है। जिसने जितने ज्यादा पदार्थ इकट्ठे किए हैं, जिसने जितने ज्यादा सुख भोगे हैं, उतना ही ज्यादा वो बेचैन होता है, क्योंकि सारी संपत्ति छोड़ के जा रहा है वो। जैसे कि जितना ज्यादा मैंने किसी अपनी पत्नी के द्वारा, अपने बेटे के द्वारा, अपनी बेटी के द्वारा, किसी के द्वारा जितना भी ज्यादा मैंने सुख भोगा है, तो उसके मरने पर उतना ही लंबा मुझको दुख झेलना पड़ता है। मुझसे याद उसकी भूली ही नहीं जाती। तो इसीलिए लाइफ में जिसने जितना ज्यादा सुख भोगा है, उतना ही गहरा दुख उसने भोगना है। यहां से पता लगता है कि समतादास ने क्यों ये बात लिखी हुई है कि हर सुख दुख में बदल जाता है। वो बदलना ही बदलना है, ये द्वंद्व रूप है, एक साथ बने जोड़े से हैं ये सुख दुख, दिन रात। आप पूरे साल का एस्टीमेट लगाओ, जितनी लंबी रात होती है उतने लंबा दिन होता है। मतलब एक साल में 6 महीने की रात हुई तो 6 महीने दिन भी होता है। वैसे आपको दिन छोटे बड़े नजर आएंगे, लेकिन पूरे साल का देखोगे तो इक्वल नजर आएंगे, क्योंकि द्वंद्व रूप है, एक से दूसरे का निर्माण हो रहा है, एक से दूसरे का निर्माण हो रहा है। तो दुख ज्यादा इकट्ठा किया है दुख से, तो आपका सुख भी ज्यादा मिलेगा, सुख ज्यादा इकट्ठा किया है आपने तो दुख ज्यादा मिलेगा। तो दुख कौन सा आप ज्यादा इकट्ठा करते हो? संयम का दुख, संयम करते हो ना अपने जीवन पर, मर्यादा में भोग को भोगते हो, तो क्या होता है आपको दुख भी कम भोगना पड़ता है। सुख कम भोगे तो दुख भी कम भोगना पड़ता, बीवी बच्चों से मोह कम किया तो दुख भी कम भोगना पड़ेगा, आसानी से वैराग्य भाव आपके अंदर पैदा हो जाए। तो अंतर साधना में उतरना है, क्योंकि मैं मेरे दुख का कारण मेरा ही मन है। हर मनुष्य मन में इकट्ठे किए हुए संस्कारों के कारण बेचैन होता है, क्योंकि उन संस्कारों के कारण उसके अंदर इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं की तरंगे उठती हैं, और वो हर इच्छा पूरी हो नहीं सकती, इसलिए बेचैन है तो सारी जिंदगी का। इसीलिए मनुष्य जन्म इसी वास्ते मिला है, जो ये वासना छेदन विवेक में, वासना का छेदन करना है मैंने, वासना अपने धीरे धीरे नष्ट करनी है, खत्म करनी है। और मैं वासना बढ़ा रहा हूं, कमाई बढ़ा बढ़ा के, अपनी जो है सहूलतें बढ़ा बढ़ा के, अंदर से बड़ा खुश हो रहा हूं, मेरा विकास हो रहा है, मेरे बच्चों का विकास हो रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है उनको। अरे उनकी बर्बादी के लक्षण तैयार हो रहे हैं, वो भविष्य में उन्होंने आगे बढ़ना है ना। जिसने बचपन से कार देखनी देखी हो घर में, तो कहेगा मैंने तो आगे हवाई जहाज की ही यात्रा करनी है, कार चाहिए तो फिर बड़ी कार चाहिए, फिर मुझे BMW चाहिए मुझे तो। जिसने बचपन से घर में होंडा सिटी देखी हो, तो बड़े होकर BMW की कल्पना करेगा। इसीलिए मसला गंभीर है। तो ये सोचिए कि इंद्रियों को मैंने अंतर्मुखी बनाना है, अभी तो मेरी बाहरी प्यास के मारे बाहर दौड़ रही है। इसलिए सिमरन से लापरवाही करनी है, अपनी मूल बर्बादी करनी है। इस चीज को समझें कि हर हालत में जो गुरु ने प्रोग्राम दिया है, ये मिनिमम प्रोग्राम दिया है, मैक्सिमम नहीं है ये। तो मिनिमम प्रोग्राम तो मैंने जीवन में अपनाना ही अपनाना है, अपने सारे जो क्रियाकलाप हैं सांसारिक उसको मैंने एडजस्ट करना है इस सिमरन के लिए, तब तो मैं होशियार इंसान हूं, होश वाला इंसान हूं। अन्यथा उल्टे मार्ग पे चलूंगा, वासना छेदन तो नहीं करूंगा, वासना को बढ़ाकर संसार से जाऊंगा। इसलिए हो सकता है मैं इस अधिकार को भी छोड़ दूं कि मुझको मनुष्य शरीर प्राप्त होना चाहिए, तो प्रभु मुझको पशु योनि में डाल देते हैं। यानी जीव की तो मृत्यु है नहीं, मेरी मृत्यु नहीं है, मृत्यु देह की है। मेरा मन भी जिंदा बच जाता है, मेरी इंद्रियां भी जिंदा बच जाती हैं, और मैं होश वाला जीव भी जिंदा बच जाता हूं। और यही इंद्रियां मन जो है वो पशु के शरीर में काम करती हैं, तो वहां कितनी पराधीनता है, कोई स्वतंत्रता ही नहीं है आपको। इंस्टिंक्टिव लाइफ कहा जाता है उसको, जो इंस्टिंक्ट पशु को दे दिया गया, या यूं कहिए जो प्रारब्ध दे दिया गया उसके अनुसार, उससे हटके ना उसकी सोच है ना उसका विकास है। मैं तो विकास कर सकता हूं, लेकिन वो विकास नहीं कर सकता। तो पूरा जीवन उसका बंधन वाला है। तो जब मैंने होश में जीवन जिया ही नहीं तो बंधन वाले जीवन का ही तो अधिकारी हूं मैं, इसलिए पशुयोनी में चला जाता हूं। क्या दुर्दशा है। एक तरफ महाराज जी हैं जिन्होंने पिछला जन्म होश में व्यतीत किया, तो बचपन से क्या हालत है इनकी, मनुष्य का जन्म भी मिला है और बचपन से जब 3 साल के थे ईश्वर का होश है इनको, अंदर ईश्वर का रस है इनके, सारी रात बैठे हुए हैं खाट के ऊपर और आज उनका जीवन यदि कीमती नहीं होता तो आज हमको क्यों याद करते उनके लिए हम यहां क्यों बैठे होते हैं, उनकी बातों पर विचार क्यों करते हैं, हमारी बातों पर कोई विचार करेगा, हम मर जाएंगे पता नहीं कहां चले गए, उनकी बातों पर आज हम बैठे बैठे विचार कर रहे हैं। इसका मतलब वो आध्यात्मिक जीवन कीमती है, हमारे लिए भी कीमती है, लेकिन फिर भी होश नहीं आ रही। इसलिए आध्यात्मिक जीवन जिए। और ये तो योग की आगे की बात है कि इंद्रियों को मन में लीन करे, लेकिन पहले सिमरन में तो पक्के हों, ये स्थिति तो बाद में आएगी। यदि वहीं हम लापरवाही कर रहे हैं तो ये स्थिति तो कभी नहीं आनी हमारी। तो इस देह के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है, वो मेरा है, वो मेरा रियल पिता है, वो आनंद रूप है, वो ज्ञान रूप है, तो मैंने उससे मिलने की तड़प अपने अंदर पैदा करनी है। तब ये एक दिन मेरे जीवन में भी आ सकता है कि इंद्रियां मन और बुद्धि जब तक एक स्वरूप में ना आ जाते हैं तब तक कर्तापन का या मूल अहम का नाश नहीं होता, जो कि भ्रम रूप है, ये भ्रम है याद रखिए। तो जीव का जो सारा जीवन सांसारिक जीवन है ये भ्रम रूप है, और गुरु का जो जीवन है वो ज्ञान रूप है, क्योंकि वो ज्ञान में स्थित है। ज्ञान कोई बौद्धिक ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, वो अनुभवी ज्ञान है कि सारे जगत का जो मालिक है वो ईश्वर है, सारा जगत वास्तव में ईश्वर रूप है, लेकिन ये कल्पना मेरे मन की है जो मुझको ये ठोस रूप में संसार के रूप में दिखाई पड़ रही है। ये तो वाणी ये बात क्यों कहती है कि सब जग मन का खेल है, कर अंतर माही विचार। ये अंतर्गत तू इसको अनुभव कर करके देखता है कि कैसे स्वप्न रूप है, ये मन का खेल कैसे है, ये प्रैक्टिकल सत्य है। तो साधना में सब अनुभव होते हैं आपको। इसलिए जो वासना है ये गहरा रोग है, 5 विकार हैं, ये गहरा रोग है, धीरे धीरे मैंने इनसे मुक्त होना है, संयम के द्वारा, साधना के द्वारा, और इसमें गुरु 3 काल सहायक है, वो गुरु अंदर ही बैठे हुए हैं, मैं उसकी बात मानता नहीं। नहीं तो महा जी ये बात क्यों कहते हैं कि सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करें पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ उधार। तो ये नाभि चक्र है, ये घटका पाठ है, तूने उसके कहने के अनुसार साधना करनी है, फिर ये दरवाजा खुलेगा, फिर अंदर की यात्रा तेरी तय होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।